आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक और इस दिन के लिए जो उसने हमें दिया है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं जीवित और आज साथ मिलकर उसकी आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पिछले दो रविवार से याकूब की यात्रा मनन कर रहे हैं। जब हम देख रहे हैं तो याकूब की यात्रा हम पिछले दो रविवार से हमने इस बात को देखा था। तो मेरे साथ आप उत्पत्ति की पुस्तक निकालेंगे और हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि जब पहले रविवार को 12 तारीख को हमने विचार किया था तो हमने इस बात को देखा था एक शारीरिक व्यक्ति किस प्रकार से आत्मिक व्यक्ति बनता है, किस प्रकार से, या ये कह दीजिए सांसारिक व्यक्ति किस प्रकार से भक्तिपूर्ण व्यक्ति बनता है। दूसरा हमने पिछले इतवार को देखा था परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको वो अनुशासित करता है। परमेश्वर अपने प्रेम में लोगों को अनुशासित करता है। और हमने देखा था कि किस प्रकार से याकूब को परमेश्वर ने अनुशासित किया। और जो आज हम देखना चाहते हैं, आज जो हमारा विषय होगा, पिछली बार 12 तारीख को हम उत्पत्ति 25 अध्याय से लेकर उत्पत्ति 28 अध्याय तक गए थे। फिर उसके बाद दूसरे इतवार को हमने 29 अध्याय से 35 अध्याय तक हम गए थे। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, बीच में हम छोड़ेंगे अध्याय को, क्योंकि उसमें याकूब और यूसुफ के सारे घटनाओं का बारे में वर्णन है। लेकिन हम खास रूप से देखना चाहेंगे उत्पत्ति 46 अध्याय से लेकर उत्पत्ति उसके 49 अध्याय तक, 49 चैप्टर तक। और हम ये देखेंगे कि आज किस प्रकार से एक परिवर्तित व्यक्ति आशियों का स्रोत बन जाता है। अर्थात याकूब जो आशीषों का चुराने वाला था अब आशीषों का देने वाला बन गया। एक दिन आशीषों का चुराने वाला था, अब वो आशीषों का देने वाला बन गया। और हम आरंभ से देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमारा परमेश्वर सार्वभौमिक परमेश्वर है, सब कुछ वो निरंतर में रखता है। और मनुष्य चाहे कितना ही भागे, कुछ भी करे, जिसको परमेश्वर चुन लेता है, जैसे हमने सुन लिया भैया जब प्रार्थना करते इफिसियों के पहले अध्याय को उन्होंने कोट किया, परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया और उसमें चुनने के बाद उसने स्वर्गीय आशीष से हमें आशीष किया। तो जब परमेश्वर किसी को चुन लेता है तो वो व्यक्ति भाग नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर उसको अपने पास ले आता है और धीरे धीरे करके उसको परिवर्तित करके अपनी महिमा का कारण बनाता है और अपनी योजना को उसके द्वारा वो पूरी करवाता है। और हम बार बार इस बात को देखते चले आ रहे हैं। जब हम याकूब के जीवन को हमने आरंभ किया था, हमने इस बात को देखा था किस प्रकार से उसका जीवन, उसने एक अड़ंगा मारने वाले से आरंभ किया, उसने अपने भाई के अधिकार को छीन लिया, उसने भाई के आशीष को छीन लिया, उसे झूठ बोला, पिता को धोखा दिया, सब कुछ किया। लेकिन हमने इस बात को देखा कि उसके कारण परमेश्वर ने उससे एक बार बात करी, लेकिन फिर भी वो सब कुछ कहने के बाद परमेश्वर मैं ये करूंगा लेकिन आगे परमेश्वर से नहीं जाना चाहा कि मुझे परमेश्वर क्या करना चाहिए। फिर भी उसने अपना समझ का सहारा लिया और आगे बढ़ा। तो 20 साल तक परमेश्वर ने उससे बातें नहीं करी। हमने पिछले बार इस बात को देखा था। क्यों? हमने इस बात को देखा था किस प्रकार से परमेश्वर उन सारी कठिनाइयों में, कठिन परिस्थितियों में वो परमेश्वर उसके साथ व्यवहार कर रहा है और उसका निर्माण कर रहा है। और हमने देखा था कि परमेश्वर हमारा कुमार है और जिस प्रकार से एक कुमार पात्र को बनाता है वो भी इस तरह से याकूब के जीवन को बना रहा है। और याकूब का किस प्रकार से न केवल 20 साल संघर्ष करना पड़ा, कठिन परिश्रम करना पड़ा, लेकिन 20 साल के बाद फिर वापिस आते समय 10 साल और उसको लगे और 10 साल और बीच में फिर भटका वो, लेकिन 10 साल 30 साल के बाद वो पिता के पास वापिस आता है। और तब हमने उसके बाद देखा पर बाद में 17 वर्ष तक वो पिता के साथ रहता है और तब उसके बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। ये हमने इस बात को देखा था। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि सच है अब परमेश्वर किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करता है। और याकूब ने सीख लिया था जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा। हमने पिछली बार बहुत विस्तार से इस बात को देखा था। और उपदाया उसके पहले अध्याय 15 पद में लिखा हुआ है जैसे तूने किया है तेरे सिर पर लौटा दिया जाएगा। याकूब ने यह भी सीख लिया है कि परमेश्वर परिवर्तित करता है और आशीष देता है। याकूब ने यह भी सीख लिया था परमेश्वर परिवर्तित करता है और आशीष देता है। अब और आगे बढ़ा है और उसने ये भी जानी था कि परमेश्वर महान है और वह अपने सनातन योजना को अपने रीति से पूरा करता है। परमेश्वर महान है और अपनी सनातन योजना को परमेश्वर अपनी रीति से पूरा करता है। कई बार हम परमेश्वर की योजना को अपनी तरह से पूरा करना चाहते हैं, लेकिन फर्क यह है कि परमेश्वर उसे अपनी रीति से पूरा करना चाहता है, और इसलिए हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र करना है। जब हमने पहले कदम को देखा था, अच्छा होगा एक दो पदों को हम देखेंगे, पिछले 28 अध्याय के और उसके 13 पद में पहली बार परमेश्वर ने उसे दर्शन कहा देकर कहा, और देखो यहोवा उसके ऊपर खड़ा है और ये कह रहा है, मैं तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर यहोवा हूं। पहली बार उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था, और हमने वचन को देखते हुए कि परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम यहां पर कलीसिया में आते हैं, शायद एक दिन आपने भी परमेश्वर की आवाज को सुना, और हमने देख रहे थे कि और विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन द्वारा होता है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना, हमने मसीह से सोचा, हमने उसको हृदय से ग्रहण किया, हमने उसको मुंह से अंगीकार किया, परमेश्वर ने उस सुसमाचार का कार्य हमारे जीवन में किया, और सुसमाचार का प्रत्युत्तर देना बहुत ही अधिक अनिवार्य है। परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है, सुना है, लेकिन अभी भी उसके जीवन में कुछ और होना बाकी है। तब उसके बाद कैसे उसके जीवन परिवर्तन आ रहा है, तब उसके बाद एक प्रार्थना करता है। इस प्रार्थना में हम उसके जीवन की कुछ मोड़ को देखते हैं, जिस पर पिछली बार भी हमने विचार किया था, और वो 32 अध्याय और उसका 10 पद में है। वो कहता है, मैं तेरी सब करुणा और सब सच्चाई के उन कामों के योग्य नहीं हूं। अब यहां उसके जीवन में एक दीनता और नम्रता आती है, मैं इस योग्य नहीं परमेश्वर, मैं तो लुटेरा हूं, मैं तो धोखा देने वाला हूं, मैं तो छल करने वाला हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो इस योग्य नहीं। हम इस योग्य नहीं थे कि हम परमेश्वर के उद्धार के को प्राप्त कर सके, हम इस योग्य नहीं थे कि हम परमेश्वर के दंड से बच सके, हम इस योग्य नहीं थे कि हम परमेश्वर की कृपा को पा सके। दाऊद का वो अनुभव आज हमारे जीवन के साथ इस बात से मिलता है, लेकिन पर वो कहता है, परमेश्वर आप अनुग्रहकारी और करुणा में है। और ये सच है, आज हम वर्तमान में हम कह सकते हैं हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी करुणा में है, और उसकी करुणा उसका अनुग्रह इस बात से प्रकट हुआ है कि उसने मेरे और आपके लिए, जबकि हम इस योग्य नहीं थे, पाप के कारण दंडित हो चुके थे, परंतु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मेरे और आपके लिए भेज दिया, ताकि जो कोई पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये उसकी करुणा, ये उसकी सच्चाई है, क्योंकि वो किसी भी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। सो जब आज हम यहां पर बैठे हैं और हम याकूब के जीवन के बारे में और अधिक आगे विचार करना चाहते हैं, सो मेरी प्रार्थना यही है कि हम उन सारी बातों को सोचते हुए और आगे देखें कि परमेश्वर आज मेरे जीवन से और क्या चाहता है, तब किस रीति से वो आगे बढ़ रहा है, तब वो अपनी एक साक्षी देता है। अब जब वो आगे बढ़ रहा है, वापिस लौट कर आ रहा है, एसाव से मिलता है, तो एसाव के साथ सामने मिलते हुए किस प्रकार से वो साक्षी देता है, अगर आप देखें उत्पत्ति उसका 33 अध्याय 4-5 पद में, तब एसाव उसे भेंट करने दौड़ पड़ा और उसे छाती से लगाया और गले से लिपट कर उसे चूमा और वो रो पड़े, और उसने अपनी आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा और पूछा, ये तेरे साथ कौन है? ऐसा हो याकूब से पूछ रहा है, ये तेरे साथ कौन है? याकूब का उत्तर कितना सुंदर उत्तर है, कह रहा है, ये तेरे दास के बच्चे हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके दिया है, जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके दिया है। याकूब जो एक दिन ऐसा व्यक्ति था, आज उन चीजों को प्राप्त करके, उन आशीष को प्राप्त करके वो कहने पा रहा है कि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह करके दिया है। आगे चल के फिर 11 पद में कहता है, 11 पद में, इसलिए अब मेरी उस भेंट को ग्रहण कर ले जो तेरे सम्मुख लग गई है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। न केवल इस बात को स्वीकार कर रहा है कि अनुग्रह करके परमेश्वर ने दिया है, लेकिन कह रहा है मेरे पास बहुत है। एक असंतुष्टि का जीवन रखने वाला आज संतुष्टि के जीवन को लेकर आगे बढ़ रहा है। एक दिन उसके पास असंतुष्टि वास करती थी, उसके जीवन प्रभुता करती थी, और वो हड़पना चाहता था, लेना चाहता था, छीनना चाहता था, मांगना चाहता था, आशीष भी मांगना चाहता था, धोखे से लेना चाहता था, लेकिन आज वो क्या कह रहा है, मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत है। मेरे प्रियो, संतुष्टि का जीवन एक विश्वासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन है। अब ऐसा संतुष्टि का जीवन नहीं कि हम परिश्रम ना करें, काम चोरी करें, आलस करें और हम कहें हम बहुत संतुष्ट हैं और भिखारी बने रहें, वो संतुष्ट के जीवन के बारे में परमेश्वर नहीं सिखाता। वो संतुष्टि का जीवन जो परमेश्वर हमें देता है परिश्रम के बाद, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, मेहनत करने के साथ, सच्चाई के साथ, जो परमेश्वर हमें दे रहा है, चाहे वो बच्चों की आशीष है, चाहे धन संपत्ति की आशीष है, क्योंकि सबसे बढ़कर संतुष्टि परमेश्वर ने मेरे पाप क्षमा करने के द्वारा वो स्वर्ग आशीष दी है, और उसके बाद ये संसार की पृथ्वी की जो कुछ उसने दिया है उसमें हमें संतोष करना है। ये व्यक्ति के जीवन में हम परिवर्तन को देख रहे हैं, बदलाव को देख रहे हैं, किस प्रकार से इस बात को कहता है कि मैं संतुष्ट हूं। अब लेकिन आगे हम बढ़ेंगे, अब परमेश्वर ने 46 अध्याय में आएंगे, अब परमेश्वर ने फिर उसको दर्शन दिया। मैंने आपसे बताया था कि परमेश्वर ने याकूब को 7 बार अलग अलग समय पे अलग अलग रीति से दर्शन दिया है, और ये अब वो बूढ़ा हो चुका है, बुढ़ापे में आगे बढ़ रहा है। किस रीति से इस समय यूसुफ उसका बेटा उससे दूर हो गया है, उसकी समझ में तो ऐसा है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके लिए वो विलाप कर रहा है, वो कितने समय तक रोता रहा है। एक दिन इसने अपने पिता इजाक को रुलाया था, हम देख रहे थे इजाक के बारे में, लेकिन आज किस प्रकार से वो उसके जीवन में हो रहा है और कैसे, लेकिन फिर भी चूंकि परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर कैसे से बात कर रहा है और यहां पर दर्शन देकर कुछ कह रहा है। 46 अध्याय उसके पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं, 40 अध्याय उसका पहला दूसरा 4 पद तक पढ़ लीजिए मेहरबान से।
इस प्रकार इसराइल अपना सब कुछ लेकर चल पड़ा और बेर्शेबा में आकर उसने अपने पिता इसहाक के परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाए। तब परमेश्वर ने इसराइल से रात्रि में दर्शनों के द्वारा बात की और कहा, याकूब, हे याकूब, और उसने कहा, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ तेरे पिता का परमेश्वर, मिस्र में जाने से भयभीत ना हो, क्योंकि वहां मैं तुझे एक महान जाति बनाऊंगा। मैं तेरे साथ साथ मिस्र को जाऊंगा और मैं फिर तुझे निश्चय ही लौटा ले आऊंगा और यूसुफ अपने हाथों से तेरी आंखें बंद करेगा।
और यहाँ पर परमेश्वर ने इस बार अंतिम रीति से इसको यहाँ दर्शन दिया और कुछ बातें परमेश्वर ने बोली। अभी तक याकूब बार बार इस बात को देख रहा है, मेरे पिता का परमेश्वर, मेरे दादा का परमेश्वर, लेकिन यहां पर यदि पहले परमेश्वर ने उससे बातें की और उसको कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे पिता का परमेश्वर, लेकिन यहां पर परमेश्वर जब उससे बात कह रहा है वो कह रहा है, हे याकूब, हे याकूब, उसने कहा मैं यहां हूं। उसने कहा, अर्थात परमेश्वर कह रहा है, मैं परमेश्वर हूं। याकूब तू जान ले, अभी परमेश्वर ने यहां पर अपना परिचय पहले होकर वो ये कह रहा है कि मैं परमेश्वर हूं, तब कहता है तेरे पिता का परमेश्वर। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, अब मैं बार बार इस बात को समझाने प्रयास करता हूं, शब्द वाक्य हमें बहुत अधिक ध्यान देने हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रत्येक वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाया गया है और परमेश्वर उसके द्वारा कुछ कहना चाहता है, और यह सच है। और परमेश्वर इसको यहां पर एक निर्देश दे रहा है कि तू जा मिस्र में चला जा, क्यों मिस्र में उसका बेटा है यूसुफ वहां पर है, अभी कुछ बच्चे और वहां पर चले जा रहे हैं, उसके सामने बड़ी समस्या आ रही है। इसमें करान में अकाल हो पड़ा था और अकाल के कारण अब कोई भी चीज खाने होने के लिए उनके पास नहीं था, क्या करें। मिस्र में यूसुफ जो उसका छोटा बेटा है वो वहां पर शासक है, उसने बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ को संभाला है, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी है, परमेश्वर ने उसके परमेश्वर उसके साथ रहा यूसुफ के साथ, और इसलिए उसने सब कुछ बहुत अच्छी रीति से किया है। और तब उसके बाद अब इन लोगों को वहां पर जाना पड़ रहा है, ये परमेश्वर की सार्वभौमिक योजना के अंतर्गत हो रहा है, परमेश्वर नियंत्रित कर रहा है। याकूब नहीं समझ पा रहा, याकूब के बेटे नहीं समझ पा रहे, लेकिन परमेश्वर उस स्थान पर इनको ले जाना चाहता है जहां पर वो चरम सीमा पहुंचकर ये परिवार परमेश्वर की उस कथन को पूरा होते देख सके जो उसने इब्राहिम से उत्पत्ति उसके 12 अध्याय और उत्पत्ति उसके 17 अध्याय में कहते वो पूरा हो सके, उस स्थान पर इनको लेकर जा रहा है। तब यहां पर कहता है कि उससे कहा मैं परमेश्वर हूं, मिस्र में जाने से भयभीत ना हो, और ये वो स्थान था जहां पर आकर ये रहे, फिर अभी हम आगे चलकर देखेंगे। तब उसके बाद 47 अध्याय में, अब जब 47 अध्याय में आते हैं अब इसकी आयु और बढ़ जाती है, लिखा हुआ है 8 पद से, अब ये मिस्र में पहुंच जाता है, याकूब मिस्र में पहुंच जा रहा है, और पहुंचने के बाद यूसुफ बताता है कि मेरा पिता आया है। यूसुफ मिस्र में एक शासक है, फिरौन वहां पर उसका अधिकार है, उसके पास सारा खजांची और सब कुछ उसके सामने है, लेकिन जो फिरौन है, फिरौन से वो जाकर कहता है मेरा पिता आया है, और फिरौन बहुत ही आदर करता है उसके पिता का, क्यों, यूसुफ का कारण, तब लिखा हुआ सात पद में, तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को लाकर फिरौन के सामने खड़ा किया और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितनी है? इस पर याकूब ने फिरौन से कहा, मैं तो 130 वर्ष परदेशी होकर बिता चुका हूं, अर्थात कनान में बिता चुका हूं, और वे थोड़े और बूढ़े रहे हैं। 130 क्या कह रहा है वो वर्ष? अब सोचिए, परमेश्वर उसके साथ रहा है, परमेश्वर से व्यवहार कर रहा है, परमेश्वर उसको स्वीकार रहा है, परमेश्वर प्रतिज्ञा दे रहा है, याकूब को लगातार हम देखते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी याकूब को कितनी पीड़ा में से होकर आगे बढ़ते चले जा रहा है। और तब उसके बाद वहां पर उनको एक स्थान देते हैं जो स्थान का नाम है 11 पद में, तब यूसुफ ने फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में अर्थात रामसेस के देश में अपने पिता और भाइयों को भूमि का भाग सौंप कर बसा दिया। ये रामसेस वो स्थान है, अब इनको वहां पर रहना पड़ा। और तब उसके बाद यूसुफ की मृत्यु होती है। जब हम निर्गमन में आते हैं तो निर्गमन 1 अध्याय 11 पद में, तब इसी स्थान से इस्राएली लोग अपनी यात्रा आरंभ करते हैं कनान में जाने के लिए, क्योंकि मिस्र के इसी स्थान पर थे, अर्थात उतने पीरियड में ये लोग वहां पर बसे हैं। और जो 430 साल तक के लिए परमेश्वर ने कहा था वो उस समय से लेकर अब्राहम से लेकर जब अब्राहम निकला था वहां से वहां तक का वो पीरियड और काल होता है इस रीति से। तो यहां पर अब 130 साल का लगभग वो कह रहा है 130 वर्ष मेरी आयु हो चुकी है, और इस रीति से वो आगे बढ़ रहा है। तब उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, लेकिन 28 पद में, और याकूब मिस्र देश में 17 वर्ष जीवित रहा और याकूब की आयु 137 वर्ष की हुई। अब 17 वर्ष उसने इस स्थान पर व्यतीत करे अपने बेटे यूसुफ के साथ और सारे लोगों के साथ। सो कई बार ये गणना है और गणना में हमें जाना है, तो मैं इस रेफरेंस भूमि के रूप में आपको ये सब कुछ थोड़ा सा बताना चाह रहा था। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं, जो 48 अध्याय और 49 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, लेकिन 50 अध्याय वो यूसुफ के साथ समाप्त होता है। सो 48 अध्याय में अब ये बूढ़ा हो गया है, और बूढ़ा होने के बाद इसकी आंखें भी धुंधली हो गई हैं, और धुंधली होने के बाद अब कुछ हो रहा है। तब 48 अध्याय के 8 पद में, जब इसराइल ने यूसुफ के पुत्रों को देखा तो उसे पूछा, ये कौन है? और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे यहां दिए हैं। एसाव ने याकूब से ये पूछा था, ये कौन है? आज याकूब यूसुफ से पूछ रहा है, ये कौन है? याकूब बता रहा है, ये परमेश्वर के अनुसार मिला। यूसुफ कह रहा है, ये परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। सो परमेश्वर की आशा किस प्रकार से, यदि परमेश्वर हमें अनुशासित करता है, हमने पिछले इस रविवार को जब हम देख रहे थे इब्रानियों 12 अध्याय को हमने पढ़ा था कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है, लेकिन वो हमें अनुशासित करता है, हमें नाश नहीं करता, हमें बर्बाद नहीं करता, वो किसी भी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रत्येक को मन फिराव का अवसर प्रदान करता है। और यदि आप यहां पर आते हैं, परमेश्वर के वचन को बार बार सुनते हैं, तो ये परमेश्वर की ओर से आपको दिया गया बार बार अवसर है कि आप परमेश्वर के वचन को सुने, उसको उस पर विश्वास करें, उसको ग्रहण करें, और उसको अपने जीवन में लेकर के सच्चाई के साथ परमेश्वर से संबंध बना करके आप आगे बढ़े। और यदि ऐसा नहीं है तो परमेश्वर उसका कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा, आप स्वयं उसके उत्तरदायी होंगे जो भी आपको हिसाब लेना होगा। लेकिन यहां पर तब आगे चल करके अब एक और बात याकूब के जीवन में सुंदर देखते हैं, किस प्रकार से याकूब के अंदर बदलाव होता जा रहा है और परमेश्वर को कैसे देख रहा है, उसके जीवन का अनुभव किस प्रकार से लेके जा रहा है। जब अब समय आ गया कि वो अपने बच्चों को बुलाए और एक एक को वो आशीष दे, आगे चल के वो 49 अध्याय में, लेकिन अभी वो आशीष देने के साथ साथ तो बात कर रहा है। 15 पद में देखिए, फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देते हुए कहा, परमेश्वर जिसके सामने मेरे पूर्वज इब्राहिम और इजाक चले, परमेश्वर जो मेरे जन्म से लेकर आज तक मेरे जीवन का चरवाहा बना है। कितना सुंदर है, मेरे पिता मेरे दादा जरूर परमेश्वर के साथ साथ चले, लेकिन फिर भी मैं ये आज साक्षी दे रहा हूं कि वो मेरा भी चरवा कब से लेकर, जन्म से लेकर। यद्यपि मैंने गलती करी, यद्यपि बाप मैंने जन्म लिया, मैंने त्रुटि की, मैंने अपराध किया, मैंने पिता के मन को दुखाया, परमेश्वर के मन को दुखाया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर उस समय से लेकर आज तक वो मेरा चरवाहा बना है। कहां पर पहुंच रहा है वो? अपनी मृत्यु के अंत में पहुंच रहा है। समय उसका निकट है, कुछ समय बाद उसकी आंखें बंद हो जाएंगी, लेकिन उसकी एक साक्षी है। मेरे प्रियो, जब इस वचन को हम देखते हैं, मेरी और आपकी आयु चाहे जितने भी हो, क्या मैं और आप सोच सकते हैं, विचार सकते हैं कि परमेश्वर मेरे और आपका जन्म से लेकर आज तक चरवाहा बना है? शायद हमने उसको नहीं जाना था। मुझे एक घटना अपने जीवन की याद आती है, मैं उस समय प्रभु को नहीं जानता और हॉस्टल में था, और एक रात मैं बहुत ही तकलीफ में था, मेरे कान में ऐसी तकलीफ हो रही थी। आज मैं सोचता हूं तो मैं कुछ और दृष्टि से विचार करता हूं, और कोई उपचार का तरीका नहीं था। मेरी पीड़ा की जो दशा है मैं ही जानता हूं, और किस तरीके से मैं अपने बिछौने में रात में तड़प रहा था। कुछ नहीं जब हुआ, मैं परमेश्वर को उस समय जैसे जाना चाहता नहीं जानता था, लेकिन मैंने बिस्तर में घुटने टेके और घुटने टेक कर मैं प्रार्थना करने लगा। मैंने प्रभु जी मेरे इस पीड़ा से मुझे छुटकारा दे दिया, और मैं प्रार्थना करते करते घुटने टेके प्रार्थना करते करते बिस्तर पर सो गया। जब मेरी सुबह आंख खुली, मेरे सिरियाने पे कान से एक इतनी बड़ी समझ लीजिए गिल्टी टाइप की या निमकौली टाइप की कुछ चीज निकल के गिरी पड़ी थी। मैंने उसको देखा, सारा नीचे धन्यवाद दिया, नहीं सोचा कुछ ज्यादा। लेकिन आज जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं, बहुत सारी घटनाएं जीवन की जो मुझे बार बार स्मरण दिलाती है किस प्रकार से एक एक दिन करके परमेश्वर ने आगे बढ़ाया है, चलाया। जन्म से लेकर आज तक, मेरे प्रियो, आप अपनी परिस्थितियों को जानते हैं, आप अपने पृष्ठभूमि को जानते हैं, आप अपने स्थान को जानते हैं, आप अपने जन्म से लेकर की आज तक की यात्रा को जानते हैं। क्या आपका हृदय सच्चाई से इस बात की साक्षी देता है, वो परमेश्वर जिसको शायद मैं उस समय नहीं जानता था, कितने वर्षों मैंने उसका तिरस्कार किया, कितने वर्षों में उसका मैंने इनकार किया, लेकिन वो ऐसा करुणा में परमेश्वर, ऐसा दया का परमेश्वर जो जन्म से लेकर आज तक मेरा चरवाह बना है। अगर वो हमारा चरवाह ना होता तो हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। अभी हम देखेंगे चरवाह के बारे में कुछ। सो यहां कितनी एक साक्षी है जो उसके जीवन में है, और किस समय कह रहा है वो, जब इस बात को कह रहा होगा तो उसने सारी चीजों का अनुभव किया होगा, उस सारी चीजों को देखा होगा, उन परिस्थितियों को उसने विचार किया होगा जिनमें से होकर वो पल पल करके चला है, जिसमें होकर वो असफल हुआ है, गिरा है, हारा है, लेकिन किस प्रकार से परमेश्वर उसको संभाला है, यदि परमेश्वर से व्यवहार कर रहा है, यदि परमेश्वर उसको ताड़ना दे रहा है, यदि परमेश्वर उसको कठिन स्थितियों में रख रहा है, परिस्थितियों में रख रहा है। और जैसे मैंने कहा कि उसने भी लाबान के साथ धोखा खाया, एक बार नहीं 10 बार उसको चला गया सब कुछ, लेकिन उन सब कुछ में आज वो मुड़ कर देख रहा है, ओ परमेश्वर मेरा चरवाहा बना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो करुणा में परमेश्वर है, वो दया का परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। ये अद्भुत बात है उस परमेश्वर की भलाइयों को जाना, ये अद्भुत बात है उस परमेश्वर के गुणों को जाना, ये अद्भुत बात है उस परमेश्वर की सार्वभौमिकता को जाना, ये बहुत जरूरी बात है। यही तो फर्क है दूसरे देवी ईश्वरों में और यहां पर परमेश्वर में, जिसकी हम आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, यही तो फर्क है। और धन्य वे जिनकी आंखें परमेश्वर ने खोली हैं ताकि उस परमेश्वर को वो समझ सके। धन्य याकूब, आज उसकी आंखें खुल गई और कहने पा रहा है कि मेरे परमेश्वर जन्म से लेकर आज तक मेरा चरवाहा बना है। क्या ये मुझे और आपको उत्साहित नहीं करता? क्या ये मुझे और आपको परमेश्वर के लिए धन्यवाद इतनी बनाता? क्या ये मेरे और आपको और एक मेरे आपके विश्वास को और दृढ़ और मजबूत नहीं करता, ताकि हम और आनंद के साथ परमेश्वर के साथ चल सके, बढ़ सके। परिस्थिति कठिन हो सकती है, समस्याएं आ सकती हैं, कठिनाई हो सकती हैं, लेकिन हम याद रख सकते हैं कि परमेश्वर हमारा चरवाहा बना है। उसने याकूब किसे भी कहा था, मैं तेरे साथ रहूंगा, और वही प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दी, मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, ना तो तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। ऐसा वो अच्छा चरवाहा है। तब आगे चल के हम एक और बात को देखते हैं, बहुत सारी चीजें जो हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तब आगे चल के परमेश्वर से कुछ प्रतिज्ञाओं करता है कि मैं ऐसा करूंगा। लेकिन इसके बाद अब 49 अध्याय में जब हम पहुंचते हैं 49 चैप्टर में, तब पहले और दूसरे पद में, तब याकूब ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, इकट्ठे हो जाओ कि मैं तुमको बताऊं कि आने वाले दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे हो होकर सुनो और अपने पिता इसराइल की बातें ध्यान से सुनो। यहां वो याकूब के पुत्र कह रहा है और इसराइल का भी नाम ले रहा है, और इसराइल का बदला हुआ नाम था, जिसको हमने पिछले इतवार को बहुत ही सुंदरता के साथ देखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके नाम को बदला है, उसकी इच्छाओं को बदला है, उसके सब चीज को धीरे धीरे करके बदला है। परमेश्वर परिवर्तित करने वाला परमेश्वर है, और इसीलिए वो संसारिक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति बन रहा है, बनता जा रहा है। और यहां पर हम इस बात को, तब ये सब होते हुए उन 12 अपने बच्चों को बुलाता है, उनको बारी बारी करके आशीष देता है। केवल वो आशीष नहीं दे रहा है, लेकिन इन आशीषों में वो भेद छुपाया है जो परमेश्वर अब इन 12 कुल के लोगों को किस प्रकार से आगे बढ़ाएगा और कैसे इन लोगों को परमेश्वर अपने लिए, अपनी सेवा और महिमा के लिए उपयोग करेगा। यहूदा, किस प्रकार से यहूदा गोत्र आगे बढ़ेगा और किस से परमेश्वर उसके ठुंड से किस प्रकार से आने वाले दिन में यीशु को संसार में आने देगा। किस प्रकार से लेवी गोत्र आगे बढ़ेगा और किस तरह से मूसा उस गोत्र से आगे आएगा, और मूसा और हारून और ये सब लेवी गोत्र किस प्रकार से उसकी उपासना करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए एक पवित्रता से जीवन व्यतीत करते हुए उस सारी मुख्य भूमिका जो बलिदान की भूमिका है उसमें वो भाग निभाएंगे। सो इन सारे गोत्रों को एक एक नाम किस प्रकार से जब वो वर्णन करता है तो उनके लिए सब आशीष देता है। अर्थात परमेश्वर याकूब को अब इस अंतिम क्षणों में ऐसा इस्तेमाल कर रहा है कि वो उस वेद की बातों को आशीष के रूप में दे दे, ताकि आने वाले दिनों में इनका जीवन उस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए जिससे परमेश्वर की सनातन योजनाएं इनके द्वारा पूरी हो जाए। हम बार बार मुड़ मुड़ के ये देखते हैं, परमेश्वर नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर नियंत्रण करने वाला है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो 22 पद से लेकर इस पर थोड़ी देर के लिए हम ठहरना चाहेंगे। यूसुफ का बारी आती है, उससे पहले बहुत सारे लोगों को उसने आशीष दी है, सब कुछ करा है, लेकिन यहूदा की आशीष बहुत सुंदर है, जैसे मैंने बताया भी जो 8वें पद से है। परंतु 22 पद से लेकर 26 पद तक यूसुफ के बारे में कुछ बातें हैं, और जब यूसुफ के बारे में वो बात कर रहा है तो किस प्रकार से यहां परमेश्वर की अद्भुत महिमा को प्रकट करना चाह रहा है, परमेश्वर की अद्भुत योजना को प्रकट करना चाह रहा है। यूसुफ एक फलवंत डाली है, वो सोते के पास लगी फलवंत लता की एक डाली है, उसकी डालियां दीवार पर फैल जाती हैं, और बहुत सारे बाइबल के विद्वान इस बात को मानते हैं, इस बात को कहते हैं कि यूसुफ का जो चरित्र जीवन है वो कई बातों में प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर अंकित करता है। बहुत सारी चीजें, पर आगे जब क्यों कह रहा है कि वो ऐसा है, इस डाली के समान, जो वो डाली जो सोते के पास लगी है, क्या ही धन है जिसका जीवन, वजन सता एक में इस बात को पाते हैं, दो एक जो धन्य व्यक्ति है उसका जीवन सोतों के कट में बोया जाता है, रोपा जाता है और उससे वो आगे बढ़ता है। देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जीवन, अद्भुत जीवन। लेकिन तब 23 पद में दोनों धारियों ने उस पर भयंकर आक्रमण किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़ गए। यद्यपि वो यूसुफ के बारे में बात कर रहा है, लेकिन बहुत सी रीति से परमेश्वर का वचन इसकी ओर देते हुए आगे की ओर संकेत कर रहा है, आगे क्या होगा, किस रीति से, अभी आगे देखेंगे हम। तब कह रहा है, पड़ गए, परंतु उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी भुजाएं याकूब के शक्तिमान परमेश्वर के हाथों से फुर्तीली हुई। उसी के पास से वो चरवा अर्थात इसराइल का पत्थर आएगा। उसी के पास से वो चरवाहा अर्थात इसराइल का पत्थर आएगा, और ये तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करता है, उस शक्तिमान का जो तुझे ऊपर आकाश से आशीष देता है। तो तीन या चार बातें हम इस स्थल पर देखते हैं, याकूब के शक्तिमान परमेश्वर, सबसे पहली बात, बार बार अब याकूब कह रहा है याकूब का शक्तिमान परमेश्वर। आराम उसका जीवन, वो याकूब परमेश्वर को नहीं जानता था, नहीं पहचानता था, बार 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 बार, इसीलिए जब वो भाग कर जा रहा था तो उसने यही कहा था, इब्राहिम परमेश्वर, इजाक का परमेश्वर, अगर मेरे साथ ऐसा करेगा, अगर ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। लेकिन धीरे 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 परमेश्वर उसकी आंखों को खोलता चला जा रहा है, धीरे धीरे परमेश्वर उसके हृदय को बदलता चला जा रहा है, धीरे 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 परमेश्वर उसकी भावनाओं को, इच्छाओं को बदलता चला जा रहा है। मेरे प्रियो, ये सच है, जब परमेश्वर हमारे सामने अपने आप को प्रदर्शित करता है तो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा धीरे धीरे हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से काम करता है। हमारी सोच बदलती है, हमारी इच्छाएं बदलती हैं, हमारी मनसाएं बदलती हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है और हम धीरे धीरे करके और उसके निकटतम बढ़ते हुए, उसको देखते हुए, उसको समझते हुए, उसको बढ़ते चले आते हैं। ये सच है, हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है, हमने जितना प्रभु यीशु मसीह को अभी तक जाना है वो पर्याप्त नहीं है, पूरा नहीं है। हमने तो उसको जाना है, समझा है, देखा है, कुछ देखा है, लेकिन पूरा नहीं। अभी हमें और, हमें हमारी आंखें अभी खुलती जानी है, जैसे हम उसको और दिन पर दिन देखते चले जाए, ये परमेश्वर का वचन कहता है। पर यहां पर वो कह रहा है, पहली बात, याकूब के शक्तिमान परमेश्वर, परमेश्वर शक्तिमान परमेश्वर है, उसने सारी वस्तु में आकर देख लिया था। हम इस बात को देख रहे थे कि 20 साल की स्थिति से संघर्ष किया था, जब जानवर को लेकर जंगल में जाया करता था, या फिर जब रास्तों में वो वापिस जा रहा था और उसको 400 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी थी, एक तरफ जाने के लिए, दूसरी तरफ आने के लिए, उन सारी यात्रा में कैसा परमेश्वर उसके साथ साथ रहा था, कैसे परमेश्वर उसको संभाल रहा था हर स्थान पे। अब वो जान गया है, मेरा परमेश्वर शक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रश्न यह है, आज जब आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो क्या आप कहते हैं हमारा परमेश्वर, या आप कहते हैं मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा छुटकारा देने वाला, मेरा परमेश्वर शक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए जब हम धन्यवाद देते हैं तो धन्यवाद देते हैं, अक्सर हम उत्साहित करते हैं कि जब आप व्यक्तिगत रीति धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं तो उस समय प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं उस उपकार के लिए, उस उद्धार कार्य के लिए जो आपने मेरे जीवन में किए। हमारे जीवन में जब कहते हैं तो हम संबोधित सबको लेकर करते हैं व्यक्तिगत रीति से। मेरा अनुभव व्यक्तिगत अनुभव होना है, मेरा संबंध व्यक्तिगत संबंध होना है, मेरे दृढ़ता परमेश्वर से व्यक्तिगत होनी है। मैं उसको जानता हूं, मैं उसको मानता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उसके साथ चलना चाहता हूं, मैंने उसको जाना है, मेरा परमेश्वर शक्तिमान परमेश्वर है। ये व्यक्तिगत अनुभव, इसमें मैं आना है। याकूब को परमेश्वर ने उस अनुभव में पहुंचा दिया है। क्या हम उस अनुभव में पहुंचे हैं, या अभी भी हमें कुछ कमी है? स्वामी प्रार्थना कर लीजिए, प्रभु मुझ पर आप दया कीजिए, मुझ पर करुणा कीजिए, ताकि मैं व्यक्तिगत रीति से उस अनुभव में पहुंच जाऊं, मैं व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर आपको देख सकूं। आप मेरे उद्धारकर्ता हैं, आप मेरे पवित्र परमेश्वर हैं, आप मेरे सहायता करने वाले परमेश्वर हैं, आप मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप मेरे, ये हमारा संबंध आ सके। और जब मैं उसको व्यक्तिगत रीति से देखता हूं तो मेरा जीवन उसी के अनुसार आगे बढ़ता चला आता है। चाहे परिवर्तन में हो, चाहे विश्वास में हो, चाहे बदलाव में हो, चाहे निर्भरता में हो, चाहे किसी चीज में हो, प्रभु सहायता करे मेरे और आपकी कि हम उस अनुभव में आए कि परमेश्वर मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह मेरा यह। और तब आगे कहता है, ना केवल ये, लेकिन तब आगे चल के कहता है, उसी के पास से, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास से जो जगत का सृष्टि करता है, नियंत्रण करने वाला है, सब कुछ है, सनातन की योजना बना रहा, वो अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है, उस परमेश्वर की ओर से चरवाहा इस संसार में आएगा, वो चरवाहा आएगा और वो यीशु मसीह की ओर संकेत है। और इसीलिए बाइबल में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पाते हैं, वो सचमुच में बार 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 भजन संहिता 23 को हम कई बार पढ़ते हैं, यीशु परमेश्वर हमारा चरवाहा, यहोवा हमारा चरवाहा है, सचमुच में वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा सच्चा चरवाहा है। इज़ेकेल कहता है 34 अध्याय उसके 11 पद में, वो सच्चा चरवाहा है। योनास के 10 अध्याय 10 पद में कहता है वो अच्छा चरवाहा है। इब्रानियों उसको 13 अध्याय उसके 20 पद में कहता है वो महान चरवाहा है। पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 4 पद में कहता है वो प्रधान चरवाहा है, वो चरवाहा है। 23 अध्याय भजन संहिता 23:1 में वो सच्चा चरवाहा है। इज़ेकेल 34:11 में वो अच्छा चरवाहा है। यूहन्ना 10:10 में वो महान चरवाहा है। इब्रानियों 13:20 में वो प्रधान चरवाहा है। पहला पत्रस 5:4 में ऐसा हमारा चरवाहा है। चरवाहा क्या करता है? क्यों कह रहा चरवाहा? वो चरवाहा जो रक्षक करता है, वो चरवाहा जो भोजन प्रदान करता है, वो चरवाहा जो अगुवाई करता है, वो चरवाहा जो शिक्षा देता है, वो चरवाहा जो सुखदायी झरने के पास ले जाता है, वो चरवाहा जो सारे शत्रुओं के आक्रमण से, उन जंतुओं से, उन सारी चीजों से बचाता है। लेकिन साथ साथ अगर भेड़ इधर और उधर जाती है तो अपनी संटी से वो हमें फिर वापस ले आता है। आपने हमेशा चरवाहों को देखा होगा, जब वो चलते हैं चरवाहा आगे चलते हैं, भेड़ पीछे पीछे चलती है, की आवाज सुनकर चलती है। और उसके हाथ में एक मोटी लाठी होती है और एक पतली छड़ी होती है। मोटी लाठी से भेड़ को मारने के लिए नहीं होती, मोटी लाठी से उन लोग उन चीजों से जो उस पर आक्रमण करती थी उनकी भेड़ों को, उनको बचाने के लिए होती है। लेकिन जब भेड़ इधर हो जाते हैं तो पतली छंटी होती है, साटी होती है, उससे वो उनको एक झुंड में ले आता है। हमारा ऐसा चरवाहा है और वो चरवाहा आएगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर की योजना के लिए। याकूब तो विश्वास में उस आशीष देते हुए कह रहा था, उसने तो उस बात को नहीं देखा था, लेकिन हम धन्य हैं जिन्होंने उस बात को पूरा होते देखा है। और आज हम कह सकते हैं हमारा यीशु मसीह संसार में आया है, वो एक सच्चा अच्छा चरवाहा है और उसने हमें अपने झुंड में शामिल किया है। वो चरवाहे ने सबसे बड़ा काम ये किया कि मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। मेरे और आपके लिए उसने निंदा सही, अपमान सहा, लहू बहाया, ताकि हम उस दुष्ट पाप से और दुष्ट से और दुष्ट के हाथों से छुड़ाए जा सके, छुड़ाए जा सके। वो ऐसा चरवाहा है, वो चरवाहा आएगा। तब उसके बाद वो कहता है इसराइल का पत्थर आएगा, प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करता है, वो इसराइल का पत्थर आएगा। अद्भुत रीति से हम भजन संहिता उसके 118 उसके 22 पद में, उसके बाद यशाया उसके 28 अध्याय उसके 16 पद में कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा ना वो डगमगाएगा और ना कभी विचलित होगा। वो पत्थर जो हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं पत्थर है, जिसके लिए मती में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बात करते हुए वर्णन किया है। ना केवल वो ये चरवाहा है, ना केवल वो अद्भुत पत्थर है, लेकिन उसके साथ साथ तब वो आगे कहता है कि वो सारी आशीष कह रहा है, लिखा हुआ है वो पिता ईश्वर का काम करता है जो तेरी सहायता करता, उस शक्तिमान का जो तुझे ऊपर आकाश से आशीष देता है। ऊपर आकाश से आशीष देता है, परमेश्वर सारी आशियों का स्रोत है। पुराने नियम और नए नियम में ये फर्क है। पुराने नियम में मनुष्य केवल भौतिक आशियों की बात करता था और व्यवस्था को पूरा करने के द्वारा वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन उसके लिए असंभव हो गया, वो नहीं कर पाया। पर जब हम नए नियम में आते हैं तो सबसे बड़ी आशीष नए नियम में हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, जिसने स्वर्ग सिंहासन छोड़ करके इस पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए वो आ गया। संसार उसको नहीं समझता। अभी क्रिसमस का समय आ रहा है, लोग तरह तरह से मनाएंगे, तरह तरह सोचेंगे, मेरे प्रियो वो मेरे और आपके लिए नहीं है। हम उसकी मूल्यता को जानते हैं, हम उसकी सच्चाइयों को जानते हैं, हम उसकी हकीकत को जानते हैं कि उसने क्या किया है। लेकिन तब आगे चल के वो आशीषें ना केवल उद्धार की आशीषें, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बढ़कर, इसीलिए पहला अध्याय उसके तीसरे पद से, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो जिसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशों से आशीषित किया है। सब प्रकार की आत्मिक आशों से आशीषित किया है। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। उसने हमें अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले ही से अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा लेपालक पुत्र होने के लिए ठहराया है। उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। क्या कर दिया उसने? उसने हमें जगत की उत्पत्ति से चुन लिया। वो आशीषें क्या दी? उसने अपनी महिमा की इच्छा के अभिप्राय के अनुसार, भले अभिप्राय के अनुसार, न केवल इतना, लेकिन उसने हमें अपना लेपालक पुत्र होने का अधिकार दे दिया। लेपालक पुत्र होने का, ये आशीष, ये स्वर्गीय आशीष है। हम तो एक दिन संसार में थे, भटक रहे थे, याकूब जब ये नाशी को दे रहा है तो किस प्रकार से वह परमेश्वर को देख रहा है कि परमेश्वर क्या है। मैं बार बार उन बातों को दोहरा रहा हूं ताकि हम समझ सकें। कहां से उसकी यात्रा आरंभ हुई, कैसे उसकी यात्रा आरंभ हुई? वो तो कुछ को देख करके डर भी था, लेकिन डर के साथ साथ उसकी कुछ सामने कोई चीज थी कि ठीक है मैं जाऊंगा, मामा के यहां जाऊंगा और मामा की लड़की से मैं विवाह करूंगा। जबकि उसका मामा हम जानते हैं क्या था, हमने पिछले इतवार को देखा था। और याकूब ने इसीलिए कहा था कि जब वो राहेल और सब लोग चले आ रहे थे तो याकूब ने कहा था उन सारी मूर्तियों को निकाल के गाड़ दो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने वस्त्र बदल डालो। याकूब ने कहा, वो पिता की घर की ओर वापिस जा रहा है लेकिन रास्ते में रुककर उसने कहा ये सब को। और वो समय आया जब उसने अपने आप को लाबान से अलग कर दिया पूरी रीति से, वो समय आया जब उसने अपने आप को एहसास से अलग कर दिया पूरी रीति से, और तब परमेश्वर किस प्रकार से उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। और हमने इस बात को देखा था, फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि मसीह जीवन एक अलगाव का जीवन और पवित्रता का जीवन है। किसी भाई ने कहा उसके बाद, यदि हम अपने आप को संसार से अलग कर लेंगे तो हम विवाह या दूसरी चीज कैसे होगी? हम बार बार इस बात को हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, विवाह के लिए स्पष्ट बात है, स्पष्ट बात यह कि परमेश्वर का वचन हमें यह शिक्षा नहीं देता है कि हम अन्य जाति के साथ, अन्य जाति मतलब जो अविश्वासी हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, जिन्होंने विश्वास नहीं किया है, जो हमारे विश्वास से अलग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का पालन करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों के अनुसार चलने के में प्रयत्नशील हैं, हम ये करते हैं। अगर कोई दूसरा उससे हटकर विवाह करता है तो बाद में उनके लिए मुसीबत आ जाती है। और हमने इस बात को देखा था कि अन्य जाति से विवाह करने के कारण क्या मुसीबत ऐसाओं की आई थी, हमने इस बात को देखा था। सो बार बार इस बात को हमने समझना है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत ऐसी पृष्ठभूमि से आए हैं, आपके लिए सरल नहीं होता, कठिन होता है, लेकिन दो बातें हैं, पहली बात विश्वास करना है, दूसरी बात प्रार्थना करना है और परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना है, परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना है। और परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है। हम जिस समाज में हैं, समाज उसको नहीं समझता, समाज उसको नहीं पहचानता, लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं तो हमें सबसे पहले परमेश्वर के वचन को अपने सामने रखना है। यह परिवर्तित जीवन, यह बदलाव जीवन, यह अद्भुत जीवन है। और जब हम परमेश्वर का आदर करने लगते हैं तो परमेश्वर हमारा आदर करने लगता है। परमेश्वर कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और उसका आदर करने मतलब ये उसके वचन को पालन करना है, उसका आदर करने मतलब उसके वचन को पालन करना है। और यहां पर याकूब इस बात को देख रहा है कि आशीष क्या है। तो मेरे और आपके लिए आशीष है, संसार तरह से देखता, दूसरी तरह से देखता है, किसी रीति से हमारे बच्चे का विवाह गया बड़ी भारी आशीष मिल गई, लेकिन उसका भविष्य क्या जा रहा है, कल क्या जा रहा है? तुमने खुद उसको नरक में ढकेल दिया है। अभी तो धूमधाम से ढोल बजाया, सब कुछ करा, खिलाया पिलाया, 6 महीने बाद आंसू बहाने लगे, क्यों? निर्णय गलत हो गया। इस चीज को मैं इसलिए आशीष के रूप में आपके सामने डालना चाह रहा हूं। ये एक आज बहुत ही प्रैक्टिकल विषय है, व्यवहारिक विषय है, जिसको हम अपने यहां और बाहर भी देखते हैं। अभी पिछले हफ्ते हम सुल्तानपुर में थे, ऐसे परिवारों के साथ बैठकर हम वचन अध्ययन कर रहे थे, देख रहे थे उनकी समस्याओं के बारे में। मेरे प्रियो, इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाई बहनों से, जो परिवार वाले हैं, आप अपने बच्चों के लिए पहले से प्रार्थना करिए, प्रभु के लोगों की सलाह को मानिए, उनके साथ शेयर करिए, वो आपके लिए प्रार्थना करें, और ठीक समय पर परमेश्वर कोई ना कोई उपाय जरूर करेगा। परमेश्वर घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, इसको समझना है। पर यहां पर तब यहां पर वो कहता है वो आशीषें जो आकाश से मिलती हैं, ऊपर से आती हैं। संसार की चीजें, रोटी कपड़ा मकान हमें चाहिए, जरूर चाहिए, लेकिन इसको तो हमसे ज्यादा अन्य जाति लोगों के पास होता है। लेकिन एक विश्वासी को परमेश्वर भूखे नहीं मरने देता यदि उसके अंदर लालच, आलस और घमंड नहीं है। मैं अक्सर बोलता हूं, एक लालची व्यक्ति, एक आलसी व्यक्ति, एक घमंडी व्यक्ति हमेशा भूखा रहता है, हमेशा कंगाल रहता है। परमेश्वर ने कहा है मैं तेरे हाथ के कार्य पर आशीष दूंगा, उसको समझना है। सो यहां पर तो कह रहा वो आशीष है जो ऊपर के आशीष है। क्या आशीष है? शांति की आशीष जो संसार नहीं दे सकता, निर्भयता की आशीष। परमेश्वर वो हमारे हृदय को ऐसे बना देता है कि हम संसार में खड़े होकर निर्भयता के साथ उसकी साक्षी दे सकते हैं और उसके लिए कहीं भी खड़े होते हैं। आपने कभी सोचा है कि अपने गांव में, अपने मोहल्ले में परमेश्वर ने आपको एक दीपक बना के रखा है? शायद आपके आसपास सारे लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन आप यीशु मसीह को जानते हैं और आपको प्रभु ने वहां पर एक दीपक बना के रखा है। तुम जगत की ज्योति हो और इसलिए रखा ताकि वो प्रकाश आपके जीवन के द्वारा, उस आशीष के द्वारा दूसरों तक पहुंच जाए। ये परमेश्वर के वचन की योजना है और हम दृढ़ता के साथ प्रभु की वहां पर साक्षी दे सकते हैं। ना केवल निर्भयता की आशीष, ना केवल दृढ़ता की आशीष, ना केवल शांति की आशीष, लेकिन एक पवित्रता की आशीष, जो हम पवित्रता के साथ परमेश्वर के भय में जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को कदापि नहीं देखेगा। और इसलिए मुझे और आपको प्रतिदिन परमेश्वर से मांगना है, प्रभु जी आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे मन में, मेरे सोच में, मेरे कार्य में आपकी पवित्रता उत्पन्न हो जाए, बढ़ती चली जाए। जरूर हमारे पांव गंदे होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू काफी है कि हम अपने पांव को और अपने गंदगी को सिद्ध हो सके। और इसे बार बार प्रभु के पास हमें जाने की जरूरत है। एक समर्पण जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया उस दिन किया था, लेकिन उसके बाद भी प्रतिदिन हमें अपने अपराधों को मानते हुए परमेश्वर के सामने अपने आप को ठीक करते हुए आगे तक चलते जाना है, क्योंकि वो विजय की आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में जोड़ना चाहता है। अगर पवित्रता की आशीष है तो उसके साथ विजय की आशीष है। और याकूब ने अपने जीवन में अनुभव किया था, संघर्ष में गया, बहुत कठिनाइयों में गया, लेकिन जब वो आशीष बांट रहा है तो क्या कह रहा है? उसने एक बात कही सब में बच्चों से, उसने क्या कहा? एक बहुत ही गहरी बात उसने कही है 28 पद में, इसराइल के 12 गोत्र यही ही हैं और यही उनके पिता ने उन्हें आशीष वाद देते समय कहा, उसने उनमें से हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार उपयुक्त आशीर्वाद दिया। उसने उनमें से हर एक को, प्रत्येक को उनकी योग्यता के अनुसार आशीर्वाद दिया। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। पर कई बार हम अपनी आशा को दूसरों की आशा से तुलना करते हैं, यहां तक कि संसारिक बाध्यता को हम दूसरे से तुलना करते हैं। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी मैं बार बार इस बात को दोहराना चाह रहा हूं, क्योंकि हम आशा की बात, संसार में बहुत जगह आशीष की बात है। एक बार एक जगह मैं गया तो उन्होंने एक बड़े बड़े पोस्टर छपवाए थे और उसमें उन्होंने कहा था मीटिंग में आइए आशीष पाइए, सभाओं में आइए आशीष पाइए। मैंने भाई आपने गलत लिखा हुआ है, और मैंने करेक्ट कराया पोस्टर छपे उसमें लिखवाया मैंने। मैंने कहा परमेश्वर के प्रेरित काम में 16-17 अध्याय में लिखा है कि और विश्वास करिए और परमेश्वर से शांति की आशीष पाइए। विश्वास करिए, पहली बात विश्वास करिए। तो आशीष केवल बाहरी आशीष नहीं, संसारी। और ये आज सारी जगह भौतिक वादता में ही चल रहा है, बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है और लोग उसमें पैसा खर्चा करते चले आ रहे हैं, बैठे बैठे अच्छा हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप 10,000 दे दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और लोग 10,000 आंख बंद करके दे देंगे। प्रार्थना हो रही है, एक साल हो गया कुछ भी नहीं हुआ। भैया वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है, बाहर भेजकर चिट्ठी भेजकर प्रार्थना मत करवाइए, अपने आप करिए, अपने भाइयों के साथ मिलकर करिए, परिवार के साथ मिलकर करिए, कलीसिया के साथ मिलकर करिए। और मौका है कि साथ मिलकर हम लोग प्रार्थना कर सकें, हमें बाहर भागने की जरूरत नहीं है। और ऐसी कई सारी चीजें हमारे विश्वास को डगमगा देती है और हमारे पांव को बहका देती है, इसलिए सावधान रहिए। सो ये हमें नहीं, वो कह रहा है कि हमने इस तरह से आशीष को दिया है और तब उसके बाद अब कितने शांति के साथ याकूब के जीवन का अंत होता है। तब वो आगे बढ़ करके लिखा हुआ 32 पद में, वो भूमि पर, वो गुफा जो उस भूमि में है, हित्तियों के हाथ से मोल ली गई है। जब याकूब ने याकूब अपने पितरों को आज्ञा दे चुका, उसने कहा बताया कि अब्राहम को यहां दफनाया गया था, सारा को दफनाया गया था, इजाक को दफनाया गया था, रिबका और सबको दफनाया गया था, वही स्थान पे मुझे भी दफनाना बता दिया गया, सब बता दिया। तब लिखा है कि याकूब ने अपने पितरों को आज्ञा दे चुका, तब उसने खाट पर अपने पैर समेटे और प्राण त्याग दिए और अपने लोगों में जा मिला। उसने अपनी दौड़ पूरी की, उसकी यात्रा यहां पर समाप्त हुई। किस रीति से उसने आरंभ किया था? लड़कते लुढ़कते, असफल होते, पाप में, संघर्ष में, बहुत सारी चीजों में, अविश्वास में, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उसके जीवन को अपने हाथों में ले लिया। मेरे प्रियो, यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, सौंप देते हैं, उसको जान जाते हैं कि वो परमेश्वर मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान मेरा परमेश्वर है, ना केवल मेरे दादा का, ना मेरे पिता का, ना मेरे पूर्वजों का, जरूर उनका है, उनसे हम सीखते हैं, और उनका ये परमेश्वर ने उनको कर्तव्य ठहराया था। जब हम भजन संहिता 78 में जाते हैं, वहां पढ़ते हैं कि इसराइलियों की सबसे बड़ी समस्या ही रहेगी, असफलता ही रहेगी, कि उन्होंने उस विश्वास को, उस कार्य को जिनकी चर्चा अपने बाल बच्चों से करनी चाहती, नहीं किया, उसके कारण उनकी पीढ़ी बिगड़ गई। लेकिन हम इस बात को भी देखते हैं कि ये एक अलग बात है, परंतु बात यह है कि मेरा वो व्यक्तिगत परमेश्वर है, मेरा वो व्यक्तिगत परमेश्वर है, और उन्हीं अनुभव को हम, उन्हीं सारी चीजों को हम पास ऑन करते चले जाते हैं, बांटते चले जाते हैं, आगे पहुंचाते चले जाते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। आराम से करा, लेकिन उसने परमेश्वर को जान लिया। परमेश्वर को क्या जान लिया? परमेश्वर ने उसके साथ क्या कहा था? आइए एक बार फिर से हम देख के उसको समाप्त करें, आगे बढ़ेंगे। जब वो भागा जा रहा था, परमेश्वर उससे 28 अध्याय में उससे कहा था, यहोवा क्या कह रहा उसे, मैं तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर यहोवा हूं, 13 पद से पढ़ रहा हूं मैं, जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा, तेरे वंश, तेरा वंश धूलि कण के सदृश असंख्य होगा और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में फैल जाएगा, तथा तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के समस्त कुटुंब आशीष पाएंगे। और सुन, सारी बात को कहने के बाद फिर परमेश्वर कह रहा सुन, अर्थात परमेश्वर जोर दे रहा है ताकि याकूब अपने ध्यान को, अपने कान को उसकी ओर लगा सके। सुन, मैं तेरे साथ हूं और जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा, जहां को तू जाएगा। कठिनाई में जा रहा है, अंधकार में जा रहा है, जंगलों में जा रहा है, कठिनाइयों में जा रहा है, संघर्षों में होकर जा रहा है, सरल यात्रा नहीं थी उसकी, यात्रा उसकी सरल नहीं थी। मेरे प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर ऐसा अद्भुत परमेश्वर है जो उससे कह सका मैं तेरे साथ रहूंगा, वो आज मेरे और आपसे भी कहना चाहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन करना क्या है, करना क्या है, करना ही है इस व्यक्तिगत संबंध में, इस व्यक्तिगत अनुभव में मुझे और आपको आना है, और अगर हम आ चुके हैं तो इस संबंध और अनुभव और दिन पर दिन व्यक्तिगत मजबूत होना है। और जब यह संबंध मजबूत होगा तो हम हर पल में, चाहे जीवन की कैसी स्थिति क्यों ना हो, हम देखने पाएंगे परमेश्वर हमारा चरवाहा बना हुआ है, वो हमारा सहायक बना हुआ है, वो हमारी अगुवाई कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत चरवाहा है। अंतिम वाक्य कैसे होगा, क्योंकि चरवाहा के नाम से याद आया मुझे, अगर वो चरवाहा है, ठीक है वो हमारी रक्षा करता है, वो ठीक है वो हमें चिंता करता है, वो ठीक है हमें देखभाल करता है, ठीक है वो हमारी सुरक्षा करता है, लेकिन चरवाहा एक सबसे महत्वपूर्ण काम ये करता है, पिछले बुधवार को भी हम इस बात को देख रहे थे, वो हमें अपने भोजन से तृप्त करता है, अच्छे भोजन से तृप्त करता है। प्रश्न यह है कि मेरे और आपके अंदर कितना अधिक उसके भोजन को प्राप्त करने की लालसा या चाहना रहती है, जो भोजन को खाने के द्वारा मैं आत्मिक रूप से तृप्त हो सकूं, मेरी आत्मिक आंखें खुल सकें, मैं उस जीवित परमेश्वर को पवित्रता के साथ और पहचान सकूं, और ताकि मैं अंत तक ये कह सकूं वो परमेश्वर मेरा चरवाहा बनाए, मैं परमेश्वर चरवाहा, परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करें। हमने याकूब की यात्रा को में आगे बढ़े, जरूर यूसुफ को हमने छोड़ा है, इजाक को हमने छोड़ा है, प्रस्ताव को छोड़ा है, लेकिन यूसुफ एक बात अंत में बात कहता है। सारी कुछ घटना घट गई, सारी कुछ घटना कर गई, उसके पिता की मृत्यु हो गई, उसने अपने भाइयों को अपने साथ रखा हुआ है, अब भाई लोग डर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि अब ये मेरे से हमसे बदला लेने लगे। लेकिन वो क्या कहता है, वो अंतिम बात एक कह के समाप्त करता है 50 अध्याय में, कहता है 19-20 पद में, परंतु यूसुफ ने उनसे कहा, डरो मत, क्या मैं परमेश्वर के स्थान पर हूं? तुमने मेरे साथ बुराई करने की ठानी थी, परंतु परमेश्वर ने उसी को भलाई के लिए ले लिया, जैसा कि आज के दिन हो रहा है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं, बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर, भलाई करने वाला। याकूब का बेटा यूसुफ है, पिता से यूसुफ ने भी जान सीख लिया था। मेरे प्रियो, मैं और आप 3 इतवार से याकूब की यात्रा पर विचार कर रहे हैं। हमने बार बार उसके जीवन को देखा है और एक और परमेश्वर किस प्रकार से काम कर रहा है, परमेश्वर किस प्रकार से उसके जीवन को लिया हुआ है और लेकर उसके जीवन के अंदर से जो कंकड़ियां वो निकाल रहा है, जो भी बुराई वो निकाल रहा है और उसको धीरे धीरे मोल्ड कर रहा है, बना रहा है, ताकि आज ये जान जाए और मेरे लिए उपयोगी पात्र बन जाए, मेरे लिए उपयोगी बन जाए और परमेश्वर उसके द्वारा अपनी महिमा कराए। क्या आपने सचमुच में अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा है? आपने विश्वास की, अच्छी बात है, आप चर्च में आते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अपना दशांश देते हैं, बहुत अच्छी बात है, जो कुछ भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपका समर्पण पूर्णता प्रभु यीशु मसीह के लिए है? संसार नहीं, संसार की बातें नहीं, समझौता नहीं, वो सारी चीजें नहीं, लेकिन परमेश्वर मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो मेरा है, मैं उसका हूं, वो मेरा चरवाहा है। क्या ऐसा समर्पण आपने किया है? जिस दिन मेरे और आपके जीवन में समर्पण आए, मेरे प्रियो, संसार की सारी चीजें हम अलग करते चले आएंगे और प्रभु के मार्ग में आगे और आगे बढ़ते चले आएंगे। ये हमारी शक्ति से नहीं होगा, मेरी शक्ति से नहीं, आप अपनी शक्ति से नहीं, हम परमेश्वर की सहायता से करने पाएंगे और हम कहेंगे, प्रभु मेरे अंदर लालसा है, अभिलाषा है, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, सौंपती हूँ, मेरी सहायता कीजिए, मैं अपने आप को अलग करके उस परमेश्वर को और अधिक दृढ़ता से जान सकूँ, मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर बन सके जो याकूब का परमेश्वर है, ताकि मैं उसकी चरवाही के आनंद को जान सकूँ और उसका अनुभव कर सकूँ। आइए प्रार्थना करेंगे।